हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 18 टेक्स्ट नंबर 29। इस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए कृपा की याचना करेंगे तो मन से समस्त भौतिक आसक्ति और बुद्धि से भौतिक विचारों का परित्याग करके गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करेंगे ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साध्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपीका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गारंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सूतदेवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधारं शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। चैप्टर नंबर 18 टेक्स्ट नंबर 29। कृपया मेरे साथ भगवान के इन शब्द अमृत का पान करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं बुद्धेर्वेदं धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानं अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। फिर से बुद्धेर्भेदं धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानं अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। वापिस बुद्धिर्भेदं धृतिश्चैव गुणतस् त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानं अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय. वंस लास्ट सब पढ़ो साथ में. बहुत ही सुंदर श्लोक है, भगवान के शब्द हैं. आप भाग्यवान हो कि भगवान के शब्द आपके मुख से निकल रहे हैं. कृपया पढ़ने का प्रयास कीजिए. बुद्धिर्भेदं धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानं अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय. शब्दों का अर्थ देखिए. बुद्धि, अभी बुद्धि का क्या मतलब होता है? बुद्धि, जो बुद्धि होती है ना, जो डिसीजन लेती है हमारे अंदर, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया था ना, ये जो परा प्रकृति, सॉरी अपरा प्रकृति से बना हुए जो हमारा ये शरीर है, उसके जितने 8 चीजें बताई भगवान श्री कृष्ण ने चैप्टर नंबर 7 टेक्स्ट नंबर 4 में. भगवान ने कहा भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धिर एवच खम मनोबुद्धिर एवच अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिर अष्टदा. 8 चीजों से मिलकर यह शरीर, ये चीजें बनी है, जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार. वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश स्थूल है और मन बुद्धि अहंकार क्या है? सूक्ष्म है. और इनसे मिलकर यह शरीर बना है. खम मनोबुद्धिर एवच अहंकार इति यम में अहंकार भी उसके अंदर आ जाता है और इससे मिलकर यह अपरा प्रकृति जो है यह शरीर बना है. तो आज भगवान हमें बुद्धि के विषय में बोल रहे हैं. बुद्धि बोला ना भगवान ने, बुद्धिर भेदम, भेदम मतलब अंतर, धृतिश्चैव. अब धृति का क्या मतलब होता है? धृति का भी मतलब होता है ना फैसला लेते हैं हम कोई, और बुद्धि का मतलब क्या होता है? फैसला लेना, जो डिसीजन करता है. अब इन दोनों में क्या अंतर हो सकता है? भगवान ने क्या बोला है? बुद्धिर भेदम धृतिश्चैव. अब बुद्धि और धृति के अंतर को भी भगवान कहते हैं एव मना निश्चय ही गुणतस, गुणों के द्वारा. अब इन गुणों के द्वारा, ये प्रकृति के गुण जो है ना, वो भगवान इनको इतना अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना चाहते हैं, इतने अच्छे तरीके से हमें बताना चाहते हैं. और भगवान आगे बहुत बोल भी रहे हैं. देखो, गुणतस त्रिविधम शुणो, शुणो मतलब सुनो, गौर से सुनो. बहुत ही सुनने की चीज है, आपको इसको अवॉइड नहीं करना है, जरूरी सुनना है, इसको समझने का प्रयास करना है. अर्जुन को बोल रहे हैं. अब अर्जुन उनके सामने खड़े तो सुन ही रहे ना, वो कब से सुन ही रहे, लेकिन फिर भी अर्जुन को भगवान अभी बोल रहे हैं बुद्धिर्भेदम धृतिश्चैव गुणतस् त्रिविधम शृणु. अभी इनके गुणों के अनुसार बुद्धि और भेद के तीन तरह के अंतर हैं, वो भी सुनो गौर से. और आगे बताया भगवान ने प्रोच्यमानम अशेषेण. प्रोच्यम का क्या मतलब होता है? जैसा मेरे द्वारा कहा गया, यानी कि अब तक तुम जैसा समझ रहे थे ना, उसको साइड में रखो. अब तुम ये समझो कि जैसे मैं बोल रहा हूँ तुमको, प्रोच्यमानम अशेषण, अशेषण मतलब विस्तार से बता रहा हूँ. अभी मैं तुमको डिटेल से बताने वाला हूँ पृथक्त्वेन धनंजय. पृथक मतलब भिन्न प्रकार से, एकदम अलग तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ. हे धनंजय, हे धनंजय, अब मैं आपको बुद्धि और धृति के विषय में बता रहा हूँ. अब बुद्धि और धृति में अंतर क्या है? बुद्धि का क्या मतलब? बुद्धि हमारे पास है, उसका क्या काम है? डिसीजन लेना. बुद्धि खाली डिसीजन लेती है कि ऐसा करना है, वो कुछ भी कार्य नहीं कर रही होती है, वो खाली डिसीजन ले रही होती है. ठीक है, सक्रिय नहीं है. सक्रिय का मतलब एक्टिव नहीं है, वो खाली डिसीजन लेती है कि ऐसा करना है. लेकिन उसके बाद सक्रिय क्या है? धृति सक्रिय है. धृति मतलब वो संकल्प है, बस ऐसा कर. बुद्धि क्या बोलती है? ऐसा करना चाहिए. ठीक है, अभी मुझे माला करनी चाहिए, समझो ये बुद्धि ने डिसीजन लिया. बुद्धि कुछ कार्य नहीं करी, बाकी कार्य क्या रहता है? आपका संकल्प, आपकी जो धृति है ना, वो क्या करती है? वो आपको माला उठाने पर विवश कर देती है कि अब आपको ये माला करनी है. बुद्धि ने डिसीजन ले लिया, फिर धृति जो है उस डिसीजन को फॉलो करती है. वो होता है संकल्प जो आपको करना है. वास्तव में ना, बहुत सारे लोग की बुद्धि अच्छी होती है लेकिन धृति अच्छी नहीं होती. लोग सोचते हैं कि मैं सुबह मंगल आरती पर उठूंगा, डिसीजन ले लिया ना, लेकिन क्योंकि उनका संकल्प दृढ़ नहीं होता ना, इसलिए उनका धृति अच्छी नहीं होती है. फिर वो क्या करते हैं? सुबह को उठते नहीं है, 7 बज जाते हैं, उसके बाद उठते हैं, फिर बोलते हैं अरे मंगल आरती तो हो गई, अब उठे। तो धृति और भगवान हमें बताते हैं, बुद्धि और धृति का अंतर भगवान बताएंगे। वो क्या बताएंगे, भगवान कहते हैं ये बिल्कुल अलग अलग करके मैं बताऊंगा, उसको आप कृपा करके सुनो। तो अनुवाद देखिए, भगवान कह रहे हैं, हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम उसे सुनो। भगवान कह रहे हैं अब आप इसको सुनो। तो बुद्धि के विषय में पहले भगवान श्री कृष्ण ने हमें बहुत, ये बुद्धि इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका हमारे जीवन में इतना महत्व है कि यदि बुद्धि सही होगी तो ही हम देखें। अब बुद्धि जो है उस शब्द को सब जानते हैं कि बुद्धि से हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। अब अगर बुद्धि अच्छी होगी तो राइट डिसीजन लेगी, बुद्धि खराब होगी तो रॉन्ग डिसीजन लेगी। वास्तव में हमारे जीवन में जितने भी दुख और सुख आते हैं, क्योंकि सही डिसीजन नहीं हुआ। अगर सही टाइम पर सही निर्णय ले लिया जाए, सही डिसीजन हो जाए, और जिन लोगों ने बुद्धि को वश में करके सही डिसीजन लिया है, बुद्धि जिनकी पवित्र है, वो व्यक्ति हमेशा सुखी होते हैं। और जो कभी बुद्धि को वश नहीं कर सकते, बुद्धि के द्वारा सही डिसीजन नहीं ले सकते, वो व्यक्ति हमेशा दुखी होते हैं। और बुद्धि के द्वारा ही हम सब कुछ कंट्रोल करते हैं। भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 3 टेक्स्ट नंबर 42, इंद्रियाणा ही पराण्याहु, इंद्रिये भी परम मन, मनतस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धि परतस्तुतः। इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। यानी कि बुद्धि जो है वो इंद्रियों और मन, हमारे पास अगर देखा जाए आत्मा तो सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन हम जो भी कार्य कर रहे हैं इंद्रियों के द्वारा या मन के द्वारा, उसका डिसीजन हमें बुद्धि से मिल रहा है। तो यदि बुद्धि सही होगी तो सही डिसीजन लेगी। जैसे ये हमारा शरीर कैसे चलता है, जैसे इंद्रियां हैं, एक रथ हो उसके 5 घोड़े हैं, समझो वो इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियां होती है ना, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ये जो ज्ञान इंद्रियां है ना, वो 5 घोड़े हैं समझो। वो जैसे ही कर्म इंद्रियां तो कार्य कर रही हैं, लेकिन 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां जैसे आंख कान नाक त्वचा रसना, उस वो भगाती है मन को अपने पीछे के, नहीं ये करना ये करना है। कर्म इंद्रियों को सेंस नहीं होता है, वो बस कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो सेंसेस है ना, ये ज्ञान इंद्रियां, वो सोचती है कि नहीं इसको देखना है, इसको खाना है, इसको स्पर्श करना है, इसको छूना है, इसको प्रेम करना है, इसको नफरत करनी है, जो भी ये ज्ञान इंद्रियां भड़काती हैं किसको, मन को। तो ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं, और जो रथ की जो लगाम है ना वो है मन, और जो लगाम है वो मन के बराबर, और इस लगाम को पकड़ के रखने वाला जो सारथी है, जो इस लगाम को पकड़ के घोड़ों को चला रहा है, वो सारथी कौन है, ये बुद्धि है। बुद्धि के द्वारा लगाम यानी मन को, और लगाम के द्वारा घोड़ों यानी इंद्रियों को वश में किया जाता है। समझ में आ रहा है, बुद्धि जब सही होगी तो मन सही कार्य करेगा, और मन जब सही होगा तो इंद्रियां कभी भी गलत कार्य कर ही नहीं सकते। मतलब अगर सारथी ठीक हो तो रथ बहुत अच्छी जगह ले जाएगा, अगर सारथी के हाथ में से लगाम छूट जाएगी, वो गलत रास्ते पर उसको ले जाएगा, तो घोड़े यानी इंद्रियां ना जाने कहां निकल जाएंगी, इंद्रियों की तृप्ति में कितनी गरक हो जाएंगी उसका। इस प्रकार इतना बुद्धि यानी मन से लगाम यानी बुद्धि अगर छूट जाती है, बुद्धि यानी बुद्धि क्या है, सारथी है, और उससे यदि मन की लगाम छूट जाती है तो ये जीवन न जाने किस नरक में जाकर गिरेगा, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर प्रश्न क्या उठता है कि बुद्धि को ठीक कैसे करें। अब बुद्धि सही निर्णय नहीं ले सक रही है, वो हमेशा हमें भटकाती है, हमेशा हमें हमारे दुखों का कारण बनता है, और यही कारण बनता है कि बुद्धि ने सही डिसीजन नहीं लिया। आगे जाके हमें पता चलता है रॉन्ग डिसीजन की वजह से हमेशा दुखी होना पड़ता है। तो बुद्धि को ठीक कैसे किया जाए, बुद्धि को सही कैसे किया जाए, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं चैप्टर 10 टेक्स्ट नंबर 10। भगवान कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां उपयान्ति ते। यदि कोई मेरी भक्ति करता है, सतत युक्तानां, वास्तव में बुद्धि देने वाला भी भगवान ही है। भगवान ने कहा, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि 7:10 में भगवान ने कहा, तुम जिस बुद्धि से सही कार्य कर रहे हो या गलत कार्य कर रहे हो, दुखों का भोगना पड़ता है या सुखों का भोगना पड़ता है, वो मैंने दी है। अब मैंने दी है तो उसको सही करने का तरीका खाली मुझको पता है, वो मैं तुमको बता रहा हूँ। भगवान ने कहा, तेषाम सतत युक्तानाम, आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस भजताम प्रीति पूर्वकम, मेरा भजन करना है। कैसे करना है? प्रीति पूर्वकम। सतत का अर्थ होता है कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन 16 माला करो और दूसरे दिन मतलब नहीं करो, एक दिन 25 माला करो और दो तीन दिन तक बोलो कि भाई, कोई कोई लोग है ना निर्जला एकादशी के दिन 100 माला करते हैं और दूसरे दिन बोलते हैं कल मैंने इतनी सारी माला की तो आज नहीं कर। नहीं, आपको अपनी निर्धारित 16 माला कंटिन्यूस करनी है। उसमें आपको कोई भी आनाकानी नहीं करनी है कि आज नहीं कर सकते, वो जरूरी करनी है। सतत युक्ता नाम ऐसे ईश्वर भगवान ने कितना इजी कर दिया, बस 2 घंटे में 16 माला कंप्लीट कर लो और यही आपका भजन है, यही आपकी बुद्धि को सही करेगा। भगवान ने कहा, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। अभी 2 शर्तें हैं, एक तो कंटिन्यू करना है उसको, डिसकंटिन्यू नहीं करना, और दूसरा क्या है, प्रीति पूर्वकम, यानी जबरदस्ती नहीं, प्रेम से प्रीतिपूर्वक हमें करना भगवान के नाम का जप। ऐसे नहीं कि बस मुझे है ना करना है, दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, या मुझे मम्मी जबरदस्ती करवा रही है इसलिए कर रहा हूँ, या बस दीक्षा ले रही है परेशान हो गया हूँ तो मुझे 16 माला करनी, नहीं, प्रेम से भगवान का नाम जप करना है। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है ना, ददामि बुद्धि योगम तम, जो प्रेम से करेंगे और कंटिन्यूस करेंगे उसको ही मैं अच्छी बुद्धि दूंगा, और अगर बुद्धि नहीं खराब होगी, अच्छी नहीं होगी, तो फिर हम लोग दुखी होंगे ना। तो अपने को सुखी करने के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम जब करेंगे तो उससे भगवान का कोई फायदा होगा, भगवान का फायदा नहीं होगा, आपका जीवन सुखमय होगा। तो कंटिन्यूस करना है, प्रेम से करना है। कुछ लोगों से माला जबरदस्ती करवाई जाती है, जबरदस्ती भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं प्रेम से यदि कोई मेरी भक्ति करता है तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं उससे ददामि बुद्धि योगम तम ये नमा उपयांति ते, उन्हें ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे वो मुझे पा सकते हैं। और जब भगवान को पा लिया फिर तो कभी दुख का संभव ही नहीं है कि कभी कोई दुख हो। तो ये कितना आसान भी श्लोक है, सबको आप लोग को आता भी है। 10:10 भगवान ने कहा, बुद्धि अगर अच्छी करनी है तो उसके लिए क्या करना है, प्रेम से मेरा भजन करना है। सबको अच्छा लगता है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा मुझे उसका नेक्स्ट वाला श्लोक है, वो इतना अच्छा है, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। भगवान ने कहा 10:11 भगवान कहते हैं, तेषामेवानुकम पार्थम अहमज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्मा भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता तेषामेव अनुकंपार्थम्। उनके ऊपर मैं अपनी विशेष कृपा करता हूँ, अनुकंपा करता हूँ। किन के ऊपर? जो कंटिन्यूअस मेरे नाम का स्मरण करते हैं और प्रेम से करते हैं, बुद्धि भी देता हूँ और उनके ऊपर बहुत ज्यादा अनुकंपा करता हूँ। अहम अज्ञान जमतम, और उनके हृदय में जो अज्ञान है, जो अंधकार है, जो तमा है, जो अंधकार का प्रतीक है, उसको नाशयाम आत्मा भावस्थो, उस सबको नाश कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। ज्ञान दीपे न भास्वता, और ज्ञान का प्रज्वलित दीपक उसके हृदय में और उसके बुद्धि में ऐसा ज्ञान उत्पन्न करा देता हूँ कि फिर वो कभी भी अपनी बुद्धि से गलत डिसीजन ले ही नहीं सकते। तो ये अपनी बुद्धि को अच्छा करने का तरीका भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया। और यहाँ पर हमें श्री प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद और श्री प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुणों के अनुसार 3-3 पृथक विभागों में करने के बाद, हमने ये कल डिटेल से पढ़े ना, ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता, उसके बाद ना ज्ञानम कर्म च कर्ता च, ये पढ़े हमने बोले कि ज्ञान कौन से है ना, सात्विक की राजसी और तामसी है, उसके बाद कर्म, उसके बाद कर्ता, ये सब श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं। अब भगवान कर्ता की बुद्धि तथा उसके धैर्य, उसके धृति यानी संकल्प के विषय में उसी प्रकार से बता रहे हैं। अब भगवान बुद्धि और संकल्प के विषय में बताएंगे, भगवान बता रहे हैं कि ये सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भगवान कहते हैं चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट नंबर 41, ये सब हम पढ़ के आए हैं, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर नंबर 18 है वो गीता का पूरा उपसंहार है, यानी निचोड़ है। श्री प्रभुपाद ने तात्पर्य इसीलिए इतने बड़े बड़े नहीं लिखे क्योंकि ये सारी चीजें रिवाइज है, ये सब प्रीवियस है, हमको सिर्फ जज करना है, देखना है कि ये चीज भगवान ने कहां कहां बता चुके हैं और उसको वापस से हमें याद करना है। जैसे श्रीमद् प्रभुपाद तो देख रहे हैं कि भाई इन्होंने ये सारा पढ़ लिया है, वापस उनको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी हीन है कि हमें याद ही नहीं रहता कि हमने अब क्या पढ़ा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट नंबर 41 में बुद्धि के विषय में बहुत ही सुंदर बताया। भगवान ने कहा व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम। इतना सुंदर श्लोक है, इसको यदि हम समझ जाए ना तो हमारी बुद्धि कभी भी गलत डिसीजन नहीं ले सकती है। यहाँ पर लिखा भगवान ने कहा व्यवसायात्मिका बुद्धि। व्यवसायात्मिका कौन सी होती है? जो बुद्धि भगवान में टिकी हुई है। अब देखो बुद्धि जो है वो जब डिसीजन ले रही होती है तो उसको बहुत सारी चीजों को सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है कि वो भी है, ये भी है, घर है, परिवार है। जैसे अर्जुन बता रहा था कुल धर्म है, जाति धर्म है, मेरा व्यक्तिगत धर्म है, इतना सारा मेरे को करना है, इसलिए उसकी बुद्धि जो थी वो भ्रष्ट हो गई थी। इसलिए अर्जुन ने कहा था ना भगवान श्री कृष्ण को चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 7 में, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेता यच्छेयस्याने चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हंसादि मां त्वं प्रपन्नम। के अब मैं अपनी कृपा दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, अपना सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं सही डिसीजन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बताओ कि आप मुझे बताओ, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, अब आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जो बुद्धि इस तरह से मतलब बहुत सारी शाखाओं में, बहु शाखा ही अंताश बुद्धि अव्यव, यानी कि अगर बहुत सारी शाखाओं में बटी हुई होती है ना बुद्धि, तो वो कभी भी सही डिसीजन नहीं ले सकती। लेकिन इसलिए बुद्धि को क्या करना है, भगवान की शरण में लगाना है। उसको बोलते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि, यानी कृष्ण भावना में स्थिर बुद्धि। एक ही है कुरुनंदन, एक ही मतलब एकमात्र कुरुनंदन है, कुरुनंदन कुरुओं के पुत्र बहुशाखा या अनंताश्च उनके अनेक शाखाओं में विभक्त जो बुद्धि होती है, अनंत शाखाओं में बुद्धि अव्यवसाय नाम, यानी कि वो कृष्ण भावना में नहीं लगी होती है ना, तो फिर उसके पास बहुत सारी चीजें हैं भटकने के लिए। लेकिन जब बुद्धि को आपने भगवान की शरण में लगा दिया, भगवान मेरी बुद्धि तुमने दी है, अब इसको मैं कंटिन्यू, मेरा काम क्या है, खाली आपका सतत प्रीति पूर्वक भजन करना है, बाकी आपको बुद्धि को जैसे चलाना है, जैसे डिसीजन करवाना है वो आप करो, तो रिलैक्स हो जाओगे आप। इसीलिए देखो भगवान के यहाँ पर तात्पर्य शर्मा जी बहुत सुंदर बता रहे हैं। चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 41 के तात्पर्य को देखेंगे, लिखा हुआ है यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावना अमृत द्वारा ही मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। अब देखो बुद्धि को क्यों काम में लाते हैं, ताकि सही डिसीजन मिले, और सही डिसीजन क्यों लेना है, क्योंकि सिद्धि प्राप्त करनी। लेकिन श्री प्रभुपाद जी और भगवान यहाँ पर कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही है कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, यदि आपको बुद्धि से सही डिसीजन दिलवाना है तो आपको बुद्धि को एक जगह पर टिकाना है, वो है भगवान के चरण। और इसी तरह से यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, यह दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावना अमृत ही मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होगी। अब बस एक ही दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि दूसरों की तरफ नहीं देखना है, मुझे सिर्फ कृष्ण भावना भावित होना ही है, केवल कृष्ण भावना, कृष्ण कॉन्शियसनेस ही आपके लिए सही डिसीजन है। जब ये विश्वास आपके अंदर हो तो व्यवसायात्मिका बुद्धि कहलाती है। भगवान ने कहा ना व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही है कुरुनंदन, वो एक चीज में टिकी होती है, उसकी श्रद्धा केवल इतनी होती है कि बस यदि मैं भगवान के नाम का स्मरण कर रहा हूँ, भगवान के नाम का जप कर रहा हूँ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहा हूँ, भगवान को प्रसाद अर्पण करके खा रहा हूँ, तो यही मेरे लिए कल्याणकारी है। और डिसीजन भगवान खुद ही ऐसी बुद्धि देंगे कि डिसीजन अच्छा हो जाएगा, मेरा काम मुझे करना है। ऐसा नहीं, बुद्धि को तेज करने के लिए हमें और कोई तरीका, कोई भौतिक तरीका इस्तेमाल करने के लिए भगवान ने नहीं बताया। ये तो हम लोग ऐसे बोलते हैं बुद्धि को तेज करने के लिए बादाम खाने चाहिए या ये करने चाहिए। भगवान ने कहा अगर बुद्धि को सही करना है, सही डिसीजन आप बुद्धि से दिलवाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, ये दो काम करने। और चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, मध्य लीला चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.62 में कहा गया है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। कि श्रद्धा शब्द विश्वास, श्रद्धा का क्या मतलब होता है, यह विश्वास हो कि आप एकदम सुदृढ़ निश्चय, आपका निश्चय एकदम पक्का होना चाहिए कि यदि मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है, कि बस और कुछ करने के लिए बचा ही नहीं। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास, श्रद्धा शब्द विश्वास। जब कोई कृष्ण भावना अमृत में कार्य करने में लगा होता है तो उसे अपने परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसके सकाम कर्मों में उसको लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो जाता है तो अपने कर्मों के शुभ अशुभ फलों के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहता। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल हो जाते हैं। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कितनी खास बात बता रहे हैं कि हमें ये सब कर्म जो निश्चित आज हमें मिले हैं ना, जिसके लिए हमें अलग अलग टाइप की बुद्धि यूज करके उसको डिसीजन लेना पड़ता है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पूर्व में पिछले जन्मों में हम लोगों ने अपनी बुद्धि को भगवान की तरफ आकर्षित नहीं किया था, भौतिक तरीके से हमने उसको ट्रीट किया था, तो भौतिक कर्म हमें करने पड़ रहे। आज भी अगर हम उसी में लगे रहेंगे तो आगे जाकर भी हमारे लिए दुख का कारण बने। तो बुद्धि को पकड़ के रख दो भगवान के शरणों में, और भगवान आपके नियत कर्मों के विषय में भी जो भी एक ही हक नंदन है वो बिल्कुल पक्का डिसीजन आपको मिलेगा। और बुद्धि यदि सही होगी आपकी तो सही डिसीजन लोगे और फिर कभी भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसो। आज हमारे बंधन का कारण यही है कि जब पूर्व में हमने बुद्धि के साथ सही डिसीजन नहीं लिया, भगवान के नाम का भजन नहीं किया। अगर किया होता तो हम यहाँ नहीं होते। अब किया भी होगा, अभी हम लोग कर रहे हैं ना थोड़ा थोड़ा, तो भगवान बताते हैं कि भाई पहली बारी में तुमने इतना अच्छा नहीं किया, इसलिए सेकंड चांस तुमको मिला है। अब सेकंड चांस जब मिल गया है और पता भी चल गया कि अब उसके अतिरिक्त और कोई कार्य करके हम अपनी बुद्धि के को अच्छी तरीके अच्छा डिसीजन नहीं ले सकती है और हम अपने जन्म मृत्यु के चक्कर से या दुखों से छुटकारा नहीं हासिल कर सकते हैं, इसलिए बुद्धि को एक टिका दो एक जगह पे। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक हकुरु नंदना, कि उसको एक ही जगह पे टिका दो कि भाई तुमको एक ही काम करना है। बुद्धि ज्यादा अपनी डेढ़ होशियारी करने की जरूरत नहीं है, प्रेम से भगवान के नाम का भजन करना है। कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान ने कहा तेषामे वानुकम्पार्थम् अहम् ज्ञानजं तम नाशयाम्यात्मा भावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। फिर आपको अलग से कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा, मैं खुद ही ज्ञान के दीपक से, ध्यान के प्रकाशमान दीपक से आपके अज्ञान को, आपके अंधकार को, आपके तमस को सबको नाश करूंगा। ये तमोगुणी बुद्धि जो अभी कल हमें बताएंगे ना श्री प्रभुपाद जी, बुद्धि बताएंगे ना सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी, वो सब जाया हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी ये सारी, और शुद्ध सात्वों में आ जाएंगी यदि हम प्रेम से भगवान के नाम का भजन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।